हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन रणविजय का गुस्सा अब भी काफी हद तक चढ़ चुका था और वो रोनित को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना ही नहीं, रोनित की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और ऐसा लगने लगा था कि किसी भी पल उनमें खून उतर आएगा। लेकिन रणविजय कुछ कर पाते उससे पहले ही अनामिका बहुत तेजी से चिल्लाई थी, बस करो बस, और ये सोचो कि झलक को कहाँ ढूंढे अब। जैसे ही अनामिका ने ये कहा और झलक का नाम लिया, रणविजय ने रोनित का गला छोड़ दिया था। वो लंबे लंबे खींचकर सांसें लेने लगा था। तभी कुछ गार्डों ने उसे पकड़कर पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे थे। इस वक्त रोनित की सांस पूरी तरह से उखड़ी हुई थी। वहीं अब रोनित के कानों में अनामिका की बात जैसे एक बार फिर गूंज उठी थी कि इसको छोड़ो और झलक पर ध्यान दो, तो वो सच में घबरा गया और बोला था, मैडम आप क्या कह रही हैं? झलक मैडम कहाँ है? क्या वो घर नहीं गई अभी? ये सुनते ही रणविजय लाल लाल आंखों से रोनित को घूरते हुए बोला था, अभी और इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से निकल जा यहां से। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि बेकार में तू खर्च हो जाए। रणविजय की बात सुनकर रोनित काफी हद तक डर गया था। जिस तरह से वो उसकी जान लेने पर उतारू था, उसे अब रणविजय से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा शांत करके तुरंत बोला था, लेकिन सर कल से मैं सिद्धार्थ सर का फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो अपने किसी अपॉइंटमेंट में गए हैं। सिद्धार्थ सर ऐसा कभी नहीं करते, उन्हें कुछ भी होता है तो वो हमेशा मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कोई मुसीबत आ गई हो। मैंने उन्हें आखिरी बार कल जल्दी जल्दी अपने केबिन से निकलते हुए देखा था, उसके बाद से वो लौट कर नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कल की कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं की थी और सभी इन्वेस्टर्स वापस जा चुके थे। ये सुनकर रणविजय के माथे पर शिकन आ गई। उसने तुरंत ही रोनित को गुस्से में बोला, जाकर सिद्धार्थ का केबिन खोल अभी और इसी वक्त। ये सुनते ही रणविजय खुद तेजी से भागा और चाबी लेकर सिद्धार्थ का पर्सनल केबिन खोलने लगा था। अनामिका भी उसके साथ साथ दौड़ पड़ी थी। जैसे ही उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए सिद्धार्थ के फोन पर गई, अनामिका की आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी रह गई थी। वहीं रोनित भी चौंक गया था। वो सोचने लगा था कि ये सब क्या है, सिद्धार्थ सर यहाँ कैसे हो सकते हैं? तभी रणविजय ने अपने सिर पर हाथ मारा और खुद से बोला, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? वो तुरंत रोनित की ओर देखकर बोला, फटाफट मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, अभी और इसी वक्त। ये सुनकर रोनित हड़बड़ा गया और रणविजय को मॉनिटर रूम में ले गया था। जिस वक्त सिद्धार्थ केबिन से निकले थे, उसकी टाइम डिटेल दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी चेक करनी शुरू कर दी थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि सिद्धार्थ अपने केबिन से निकलकर ऑफिस के दूसरे साइड की ओर गए थे, लेकिन ना तो वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए दिखे और ना ही किसी दूसरे केबिन में जाते हुए, क्योंकि उसी वक्त स्टडी रूम का सीसीटीवी बंद हो चुका था। ये देखकर रणविजय ने गुस्से में टेबल पर हाथ दे मारा और सोचने लगा था कि आखिरकार सिद्धार्थ और झलक कहाँ हो सकते हैं और वापस केबिन में क्यों नहीं आए, उसके बाद उनकी कोई फुटेज क्यों नहीं है, आखिर हो क्या रहा है। वो बुदबुदाने लगा था कि कहीं वो स्टडी रूम में झलक को देखने तो नहीं गए या फिर कुछ और। तभी अचानक रोनित के दिमाग में जैसे धमाका हुआ, वो बोला, सर सिद्धार्थ सर स्टडी रूम की ओर गए थे और स्टडी रूम का कैमरा तो मैंने ही बंद किया था। अब कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, रोनित तुरंत स्टडी रूम की ओर दौड़ पड़ा। उसे इस तरह दौड़ते हुए देखकर रणविजय और अनामिका की धड़कनें तेज हो गई थीं, दोनों भी उसे फॉलो करने लगे थे। वे तीनों जल्दी से स्टडी रूम पहुंच चुके थे। रोनित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से अटका हुआ था और खुल ही नहीं रहा था। अब तो रोनित के माथे से पसीना निकलने लगा था। उसने जल्दी से गार्ड की मदद से दरवाजे पर लगातार जोर जोर से धक्के लगाने शुरू कर दिए थे। रणविजय भी अब खुद को रोक नहीं पाया और पूरी ताकत से उसने एक लात खींचकर दरवाजे पर दे मारी थी। आखिरकार सब लोगों ने मिलकर जोर लगाया और वो दरवाजा जो पहले से डैमेज हो चुका था अब खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर अनामिका की चीख निकलते निकलते रह गई थी। झलक उस वक्त लगभग पूरी तरह से बेहोश पड़ी थी। उनके टॉप का एक बाजू फटा हुआ था और सिद्धार्थ ऑफिस के ही कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर अनामिका की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वहीं सिद्धार्थ को जैसे ही थोड़ा सा होश आया, वो अनामिका और रणविजय को देखकर उठने की कोशिश करने लगा था। उधर अनामिका झलक को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन झलक पूरी तरह से बेहोश थी। उस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रणविजय की आंखों के सामने का दृश्य ऐसा था मानो वो पत्थर का बनकर जम गया हो। सिद्धार्थ खुराना को इस तरह झलक के इतने करीब देखना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा बेकाबू हो चुका था। उसने दीवार पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे, तब उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। फिलहाल अनामिका ने जाकर जल्दी से कुछ लोगों की मदद से झलक को उठाया और उसके ऊपर अपना दुपट्टा अच्छी तरीके से ठीक करके डाल दिया था और फिर झलक को लेकर वहां से जाने लगी थी। सिद्धार्थ को भी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था क्योंकि सिद्धार्थ के हाथों से अभी भी खून निकल रहा था। वहीं रणविजय को लगने लगा था कि शायद जबरदस्ती सिद्धार्थ ने स्टडी रूम में झलक के साथ कुछ किया है, इसी वजह से उसके कपड़े फटे हुए थे। ये ख्याल आते ही रणविजय का दिल सिद्धार्थ का खून करने को कर रहा था। वहीं रौनित तो पूरी तरह से शर्मिंदा सा हो गया था। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ खुराना की आंखों में आंखें डालकर देख सके। वो समझ चुका था कि सिद्धार्थ खुराना उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। न जाने सिद्धार्थ खुराना उसके साथ क्या करेगा, ये सोचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। फिलहाल झलक और सिद्धार्थ दोनों को ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। दोनों को ही काफी ज्यादा कमजोरी थी। सिद्धार्थ का काफी हद तक खून बह चुका था। उसे कुछ स्ट्रिचेस आए थे लेकिन उसके बाद उसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। वहीं झलक को जल्दी ही कुछ मिनरल्स दिए जाने लगे थे। अभी वो खुद अपने आप खाने पीने में सक्षम नहीं थी। लेकिन अनामिका इस बीच बिल्कुल भी वहां से नहीं हटी थी। वहीं रणविजय खाली खाली गजरों से सीधा झलक के बेड की ओर देख रहा था। इस वक्त उसके अंदर के गुस्से की भी कोई सीमा नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना ये गुस्सा आखिर कहां उतारे, क्योंकि जिस तरीके से झलक और सिद्धार्थ एक दूसरे के करीब थे वो दृश्य उसकी आंखों में ऐसे जम गया था मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी का, अपनी दुनिया का सबसे बेकार दृश्य अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। फिलहाल ठीक एक घंटे बाद की बात होने लगी थी। सिद्धार्थ को पहले ही होश आ चुका था। सिद्धार्थ उठकर बैठ गया था और रौनित उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ अब लाल आंखों से लगातार रौनित को घूर रहा था। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बंदूक उठाता और रौनित का पता मिटा देता, ठीक उसी वक्त रौनित घुटनों के बल बैठ गया और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा था। रौनित को रोते हुए देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं आए थे, लेकिन रौनित लगातार अपनी माफी मांगने लगा था।
मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप इस तरीके से स्टडी रूम में कैद हो जाएंगे। मुझे लगा था कि आप सारा दिन झलक मैडम को देखते ही रहेंगे, तो फिर आप ऑफिस का काम कब करेंगे? इसी चक्कर में मैंने सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे माफ़ कर दो। इस वक्त रौनित पूरी तरह से खून के आंसू रो रहा था ताकि सिद्धार्थ के दिल में रहम जाग जाए, लेकिन सिद्धार्थ के दिल में भला रहम कैसे आ सकता था। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।